वेलकम बैक टू कहानियों का सफर। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। कहानियां तो आप अक्सर सुनते ही हैं, लेकिन जिन राइटर्स की मैं आपको कहानियां सुनाता हूं, एक नए इनिशिएटिव के तौर पर मैं आपको उन ऑथर्स से मिलवाना चाहता हूं, उन राइटर्स से मिलवाना चाहता हूं जिनकी स्टोरीज मैं आज तक पढ़ते आया हूं। और इसी सिलसिले में ये आज पहला एपिसोड है जिसमें हम एक ऐसी ऑथर से मिलने जा रहे हैं जो केवल ऑथर नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनालिटीज़ में उनके यूनिफॉर्म पर बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं। वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी रह चुकी हैं, वो रेडियो में भी एज अ प्रोग्राम शेड्यूल एज एन अनाउंसर वर्क कर चुकी हैं, मिसेज इंडिया एडवेंचरस का खिताब जीत चुकी हैं, उनकी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो दो और बुक पब्लिश हुई हैं उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। उनकी लिखी दो कहानियाँ बेसिकली और एक आर्टिकल को मैंने अपने YouTube चैनल पर आवाज दी हुई है। इन दिनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के तौर पर वो एक्टिव हैं, और सोशल वर्कर तो वो शुरू से रही हैं। एक NGO है उपाय, उसके साथ में वो बहुत ही एक्टिवली समाज की सेवा का कार्य भी करती हैं। मेरे साथ आज गेस्ट के रूप में मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड, सर्वगुण संपन्न भी अगर मैं कहूँ तो उनके लिए ये शब्द अतिशयोक्ति नहीं होगा, सोनाली शिरपुरकर बड़कस। थैंक यू सोनाली फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप?
थैंक यू, बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
मैं एकदम अच्छा हूँ। और सर शब्द सुन के ना मेरे अचानक से मैं 10 साल पहले चला गया, 10-12 साल पहले, जब हम ग्वालियर के रेडियो स्टेशन में साथ में काम किया करते थे। एंड मैं सच कहता हूँ, जिस सिंसियरिटी के साथ में आपने रेडियो लर्न किया था, इनफैक्ट मुझे सपोर्ट भी किया था उन दिनों, मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाता हूँ, और आपको कभी भी नहीं भूल पाता हूँ एज अ ट्रेनर एज अ लर्नर।
सर थैंक यू, एक्चुअली जिस सिंसियरिटी के साथ आपने सिखाया तभी हमने सीखा, बिकॉज यू आर नोन एज दीवाना नंबर 1 एट दैट टाइम। और मतलब आपका एक बहुत अच्छा ऑरा वहाँ पर था और हमने बहुत कुछ सीखा, सो इट कैरीज ऑन, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तो बस जिंदगी में चलते रहता है वैसे ही।
यू आर सो हम्बल दैट यू हैव गिवन ऑल द क्रेडिट्स टू मी, बट मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट, एक लर्नर की सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है, और आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, आपके अंदर सिंसियरिटी होना जायज था, लेकिन फिर भी जिस डिसिप्लिन से और जिस भाव से आपने सीखा, उसके लिए मैं आपको हमेशा याद करता हूँ, वो काबिले तारीफ है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
सो हाउ इज लाइफ, कैसा चल रहा है? आप तो ऑथर हैं, आपकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है, तो अभी राइटिंग कैसी चल रही है?
हाँ, मेरी बुक पब्लिश हुई है, कुछ कहानियाँ ऐसी भी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ हिंदी शॉर्ट स्टोरीज। तो सबको पहले बहुत आश्चर्य लगा कि हिंदी शॉर्ट स्टोरीज क्यों, आई मीन मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, वैसे मैं इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों लैंग्वेजेस में लिखती हूँ, लेकिन हिंदी मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट्स अ रूटीन हिंदी लैंग्वेज, नॉट उर्दू। और अभी राइटिंग में करते रहती हूँ, अभी एंथोलॉजीज मेरी में आए हैं, मेरे स्टोरीज, आर्टिकल्स, पोएम्स, 3 एंथोलॉजीज ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, और अभी आई एम वर्किंग ऑन मोर। तो राइटिंग तो है ही, मतलब चाहे पब्लिश हो या ना हो, आई कीप राइटिंग। मेरी कविताओं का और स्टोरीज का संग्रह कह सकती हूँ कि हमेशा रहता है मेरे पास।
That's great to know. मुझे उस दौर में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आपको राइटिंग का इतना शौक है। अच्छा, हम राइटिंग की बात करें, इससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, बिकॉज आपने कई सारी फील्ड्स में काम किया है ना, आप एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी रह चुकी हैं, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर के तौर पर भी आपने सर्विसेज दी हैं, फिर मैं देखता हूँ कि आप अनस्टॉपेबल हैं, सोशल सर्विसेज में भी आप आगे हैं, कहीं कोई इवेंट्स हो रहा हो, उसे कोऑर्डिनेट करना हो, उसे एमसी करना हो, है ना, उस तौर पर भी आप हमेशा आगे रहते हैं। आपका मिशन इतना सुंदर है कि आप एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स को, स्पेशली द गर्ल्स, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो NCC ज्वाइन करें। मैं इसके पीछे इंटेंशन भी समझ सकता हूँ, क्योंकि आप उस डिसिप्लिन और उस यूनिफॉर्म वाले जज्बे से आए हैं। इन सब में से अगर मैं एक व्यक्तित्व चुनना चाहूँ, एक डेजिग्नेशन चुनना चाहूँ, तो वो कौन सा डेजिग्नेशन होगा जो आप, एडजेक्टिव होगा जिसके साथ में आप हमेशा चलना चाहोगे?
इट इज अनडाउटेडली माई यूनिफॉर्म, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपको आपके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, और बीइंग इन डिफेंस फोर्सेस हैज गिवन मी अ लॉट। भले ही मैं सिर्फ, आई हैव सर्व्ड फॉर 6 years ओनली, पर जो आपकी एक पर्सनालिटी बनती है और जो कनेक्ट मुझे वहाँ महसूस होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो यूनिफॉर्म सबसे ज़्यादा प्रिय है मुझे, तो वो एक चीज़ है जिससे मैं हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। आज भी कोई कहे तो मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ।
सो स्वीट, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। और मैंने ऐसा देखा है कि एक बार जिन्होंने फौज ज्वाइन कर ली, एक बार जिन्होंने जिनको सर्व करने का मौका मिल गया देश को, वो हमेशा इसी जज्बे के साथ जीते हैं, चाहे किसी भी एज डोमेन में क्यों ना हो। वो कहते हैं आज भी यूनिफॉर्म दे दो, हम आज भी ड्यूटी पर आने के लिए तैयार हैं।
राइट, दैट इज देयर बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लाइफ इज नॉट लग्जरियस, डेफिनेटली नॉट, उल्टा है। इनफैक्ट मैं तो 24/7 काम करती थी और बहुत टफ लाइफ रही है, पर पता नहीं बहुत एक सेटिस्फैक्शन जो हम बोलते हैं वो रहा है। सो मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली वर्क सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ आपको वो महसूस हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ।
राइट, आज ना मेरे सवाल कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले रहेंगे, ज़िगज़ैग्स टाइप रहेंगे। मैं आपकी बुक के बारे में भी बात,
यू मीन जस्ट लाइक लाइफ इज ज़िगज़ैग,
मैं कुछ ऐसे ही करना चाह रहा था। तो नागपुर में यू आर बॉर्न और फौज में आपका जाना हुआ, एनसीसी के थ्रू मेरे ख्याल से हुआ है। तो आज ऑथर सोनाली से ना हम उसके बचपन की कहानी सुनना चाहते हैं पहले तो।
ओके, बचपन में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत टॉम बॉय टाइप की थी। मैं हमेशा बाहर ही खेलते रहती थी, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, गिल्ली डंडा, टायर चलाना, कंचे खेलना, सब कुछ करती थी। और ये मैं 10th क्लास तक करती थी। और फिर पड़ोसी आके मेरे फादर को कहते थे कि आपकी बेटी खेल रही है, एग्जाम है। तो वो कहते थे मेरी बेटी है ना, मैं देख लूंगा, उसको खेलने दो। तो आई थिंक माय फादर हैज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड सपोर्ट। सो मैं ऐसी ही थी, मतलब एवरेज थी, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट थी पढ़ाई में, आई हैव बीन एवरेज स्टूडेंट। बट स्पोर्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं फिर एथलेटिक्स में चली गई। मैं टेबल टेनिस भी खेलती थी, कबड्डी भी खेलती थी और खो खो भी खेलती थी। और उसके बाद आई वेंट इनटू एथलेटिक्स प्रोफेशनली, मींस आई यूज्ड टू रन क्रॉस कंट्री एंड ऑल। लेकिन वो सब फिर 12th के बाद जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनल, व्हाट यू कैन से, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। और 11th में मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया था, हाँ 8th में मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्शन हो चुके थे मेरे स्कूल में। और इनफैक्ट मेरी हालत ये थी, व्हेन आई जॉइंड कॉन्वेंट स्कूल इन 5th क्लास, तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो टीचर कुछ भी बोलती थी, मैं सिर्फ येस और नो में ही जवाब देती थी, मुझे कुछ आता नहीं था वो, और वो उसका रिलेशन भी नहीं था वेदर इट इज़ येस और नो, मैं सिर्फ येस नो बोलती थी। तो दैट, वो इतना बुरी मेरी कंडीशन थी। बट येस, दैट स्कूल गेव मी अ लॉट, और मैं बहुत बहुत सीखी वहाँ पर, बहुत डिसिप्लिन वहाँ पे भी मैंने सीखा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्कूल, टाटा पारसी। और उसके बाद वहाँ एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाई, तो 11th में आई ज्वाइंड। लेकिन तब हमारे आर्मी के जो सीओ थे यूनिट के, उन्होंने बोला कि हर स्कूल से, हर कॉलेज से हमें 5 लड़कियाँ चाहिए, 5 लड़कियाँ चाहिए, और ये 2 ही है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। तो मेरे फादर वहाँ चले गए और उन्होंने बोला कि लड़कियों को आप एनकरेज करने की बजाय आप पुश कर रहे हैं, यू आर नॉट लेटिंग देम ज्वाइन। सो आप नहीं ज्वाइन करने देंगे तो आई विल गो टू द हायर अप, बट यू हैव टू लेट देम ज्वाइन एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट एन अ नो। तो उनके इंटरवेंशन से आई ज्वाइंड, और वो टाइम मेरा बहुत सबसे बेस्ट था, क्योंकि काफ़ी मैंने वहाँ सीखा एंड आई डिड लॉट ऑफ कैम्प्स, नेशनल लेवल कैम्प्स, और आई वन बेस्ट कैडेट अवार्ड, और काफ़ी चीज़ें आई लर्नड ओवर देयर। So that was my journey, I can say.
Wow, so inspiring. और ये कितना, मतलब आपने अपनी जो पर्सनैलिटी बताई और उसके बाद जो अपने लैंग्वेज से कनेक्शन बताया, और थोड़ी देर पहले हम शायद बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप हिंदी, इंग्लिश और
मराठी
तीनों ही भाषाओं में आप लिखते हैं। That's so great to hear. मतलब कहाँ से कहाँ इंसान इम्प्रूव कर सकता है, उसका आप एक जीता जागता एग्जांपल।
डेफिनेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट इट, मतलब आपको लगातार वही चीज़ करनी है, और खुद में बिलीव चाहिए, सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कोई भी आके आपको गिरा सकता है, इतना आसान है आजकल की दुनिया में तो है ही।
सच है, और शायद कहानियों में भी फिर यही निकल कर के आता होगा कविताओं में भी।
हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि मेरी जो स्टोरीज हैं वो मिक्स है, लाइक कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं मेरे, कुछ मेरे फ्रेंड्स के, और उसका मिक्स मींस जैसे हम क्लाइमेक्स चेंज कर देते हैं या उसमें कुछ ट्विस्ट ले आते हैं, एंड सम आर लाइक प्योरली इमेजिनरी जो हम शायद कभी सोचते हैं या सो यस लाइफ इज अ स्टोरी ओनली, तो और क्या होता है, तो वही हमारे जो दिमाग में होता है वो निकल आता है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
लाइक दिस सोचकास्ट, ट्यून इन फॉर मोर विद द सोचकास्ट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर।
मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, पर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एनसीसी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप कौन सी फोर्स ज्वाइन करोगे।
जी,
एयरफोर्स ही क्यों चुना आपने?
नहीं, एनसीसी में तो मेरा आर्मी विंग था। एनसीसी में विंग्स होते हैं, एयर विंग, आर्मी विंग एंड नेवी विंग, नेवल विंग। तो वहां पे मुझे आर्मी का चॉइस मिला तो मैंने आर्मी ले लिया। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि आपको जो डिफेंस फोर्स में जाना है, मान लीजिए मुझे आर्मी ज्वाइन करना है आगे जाके, सो इट इज बेटर आई टेक एनसीसी आर्मी विंग, तो मुझे फायदा होगा क्योंकि उसमें क्या हल्का सा डिफरेंस रहता है उनके परेड में, उनके स्टेप्स में हल्का सा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयरफोर्स एंड आर्मी, सो सल्यूट ऑफ कोर्स इज डिफरेंट, सो ये सारी चीजें आप बेसिक पहले ही सीख जाते हैं, और उनके जो इंटरनल नॉमेनक्लेचर्स हैं, आई मीन ऑफ आर्मी स्ट्रक्चर, सो वैसा आप सीख जाएंगे, तो दैट इज देयर। और सिलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं, जो आपकी चॉइस है आप ले सकते हैं, और वैकेंसी के हिसाब से, सो देयर इज नो रूल फॉर दैट।
ओके, तो ये जो विंग्स जो हम ज्वाइन करते हैं एनसीसी में, इसमें भी हमारी चॉइस रहती है या वी आर पुट इनटू एनी विंग्स?
नो, इसमें हमारी चॉइस रहती है, बट देन डिपेंड्स कि जैसे आपकी स्कूल में क्या अटैच्ड है, या फिर स्कूल किसी से, किसी विंग से जुड़ा है या नहीं, या प्राइवेटली आप ले रहे हैं तो वहां पर वैकेंसी है या नहीं, आप सिलेक्ट होते हो या नहीं, क्योंकि उसकी भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, फिजिकल रनिंग ये वो, तो एक थोड़ा बहुत उसका भी सिलेक्शन होता है, एंड डिपेंड्स कि आपको वैकेंसी वहां पे मिल जाएगी या नहीं, अदरवाइज देयर इज नो रूल एज सच कि आपको यही लेना है, आप मर्जी वहां ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं समझ गया कि एनसीसी में आपका विंग जो था वो आर्मी था, लेकिन जब आपने इंजीनियरिंग की और उसके बाद जब ज्वाइन किया आर्मी, तो एयरफोर्स फोर्सेस में एयरफोर्स ज्वाइन किया, वो कैसे हुआ?
अब ऐसे था कि एक्चुअली माय फादर ही वाज एन एमेच्योर पायलट हिमसेल्फ, ही वाज होमगार्ड्स ऑफिसर आल्सो, और वो नागपुर फ्लाइंग क्लब के सेक्रेटरी थे, सो ही वाज कनेक्टेड टू डीजीसीए दिल्ली एंड ऑल, तो वो चाहते थे कि हम में से कोई, मींस मी एंड माय ब्रदर, हम में से कोई डिफेंस में जाए, एंड मुझसे उनको बहुत होप्स थी कि आई विल, बिकॉज आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, तो उनका ये ड्रीम था, और अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 17, सो ही कुडंट सी मी बिकम एन ऑफिसर, बट आई डिड। तो आफ्टर माय इंजीनियरिंग आई जॉइंड एमबीए, और जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीए क्लियर कर लिया था तो मैंने एडवर्टीजमेंट देखा एयरफोर्स का, सो वेरी ऑनेस्टली तब मुझे अवेयरनेस ही नहीं था, मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि आर्मी का भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा, नेवी का भी निकलेगा, पता नहीं क्यों जो एडवर्टीजमेंट सामने आया, मैंने फॉर्म फिल किया, उसकी एक रिटन एग्जाम होती है वो दी, आई गॉट कॉल फॉर SSB, क्लियर किया मेडिकल्स, इट जस्ट वेंट ऑन, सो आई डिडंट वेट, बिकॉज एक मन में वो भी था कि ये एडवर्टीजमेंट निकल गई, दूसरी कब आएगी पता नहीं, और उतना सोशल मीडिया वगैरह तब नहीं था, सो आई वाज नॉट, आई कैन से आई वाज रादर नॉट वेरी क्लियर, और रादर इतनी आइडिया नहीं थी मुझे, सो जो एडवर्टीजमेंट मैंने सामने देखा, आई जस्ट फिल द फॉर्म, एंड इट वाज फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, सो उसकी एक एग्जाम होती है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट EKT, वो रिटन क्लियर करने के बाद आपको SSB का कॉल आता है, तो वो क्लियर करने के बाद मेडिकल्स यू हैव टू क्लियर, और फिर आपका सिलेक्शन फाइनल, दैट इज हाउ इट गोस।
बट जो हुआ वो अच्छा हुआ ना, क्योंकि आपके पापा का भी वो सपना था ही, और भले ही वो फिजिकली आपको नहीं देख पाए ऑफिसर बनते हुए, लेकिन एटलीस्ट आपने सर्व किया, उनके सपने को ही तो सर्व किया।
डेफिनेटली यस,
है ना,
वो तो ये
हम कह सकते हैं कि लाइफ में जो होता है, शायद जब हो रहा होता है तब समझ नहीं आता, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है,
वो तो है, दैट इज ट्रू।
Okay.
तो वही बस उनका एक ड्रीम था, और वो हमेशा साथ है, ऐसे फील रहता ही है एक, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थी उनसे,
वो तो आपकी बातों से, आपकी बातों से निकल करके आ रहा है, क्योंकि उनके इंटरवेंशन से ही आपका एनसीसी में भी सिलेक्शन हुआ. देन यू टॉक्ड अबाउट हिज ड्रीम और पापा का सपोर्ट, नेबर्स को जो उनका जवाब देना था.
नहीं, एक्चुअली उनका क्या है, थॉट प्रोसेस काफी अनकन्वेंशनल था. मतलब कि पहराव के बारे में, कहीं जाने के बारे में. मतलब हमारे ऐसे था कि मेरे भाई को डांट पड़ती थी लेट आने पे, मुझे नहीं. क्योंकि वो मतलब मेरे पे मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे. ट्रस्ट ही नहीं, मतलब पैम्पर ट्रस्ट एवरीथिंग. एंड उनकी सोच एकदम ब्रॉड थी, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं. जीरो मार्क्स भी मिले तो भी उनको कोई टेंशन नहीं थी, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी. सो ही वॉज वेरी फ्री इन थॉट्स. तो दैट इज द रीजन आई फील कि दैट्स गुड.
राइट. पेरेंटिंग के आप इस एस्पेक्ट को आप आगे किस तरह से कैरी कर रहे हो?
सेम.
टेंशन लेते हो?
सेम. आई फील कि मुझे मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं है. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इज वेरी इम्पोर्टेंट जहाँ तक मैं एज ए पेरेंट कंसर्न्ड हूँ. और मुझे लगता है कि आजकल तो बच्चों की सोच बहुत मायने रखती है. इट इज़ ओके कि हमें उन्हें डिसिप्लिन में भी रखना है, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेयरनेस, रीडिंग नॉलेज इतना ज़्यादा है कि उनको क्या लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ थोप नहीं सकते हम उन पर. तो मैं एज ए फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम वेरी फ्री एंड वेरी लाइट.
वो लेगेसी कैरी हो रही है, ये अच्छी बात है. क्योंकि आपको जिस एज में और जिस दौर में ऐसी पेरेंटिंग मिली है, इस पेरेंटिंग के लिए लोग आज भी तरसते हैं. भले ही हम ये बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं,
राइट,
और इसकी रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ द आर है, मगर आपने प्रैक्टिकली वो पेरेंटिंग एक्सपीरियंस की है. आई एम सो ग्लैड टू नो कि आप उसी लेगेसी के साथ में आगे भी बढ़ रहे हैं और वही फ्रीडम और टेंशन फ्री लाइफ खुद भी जी रहे हैं और अपने बच्चे को भी दे रहे हैं. दैट्स ग्रेट टू.
आई मीन अ वॉच इज रिक्वायर्ड, बट वो ज्यादा प्रेशर और मार्क्स को क्या करेंगे. बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन मेरे क्लास के जो इतने ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. एट द एंड व्हाट यू लुक फॉर, मनी. आपको जॉब ही करना है ना, पैसे ही कमाने हैं सबको. सो हर कोई अच्छा कर लेता है अपने हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है. इट इज नथिंग बिग डील. सो
राइट. टेंशन लेके करें या बिना टेंशन लेके करें, हो जाती है चीजें.
हो जाती है चीजें.
तो आपके जॉब के टेन्योर के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? ये किस तरह की सर्विस रही? क्योंकि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, बट आप भले ही टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो फोर्सेस में, वो जज्बा वही रहता है सर्व करने का, ये मैंने ऑब्जर्व किया है.
हाँ, वो तो है. बिकॉज क्या होता है, तो आप फौज में सिर्फ टेक्निकल बन के नहीं रहते, आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है. आप एडमिन में भी चले जाते हो, आप मेस के फूड सेक्रेटरी भी बन जाते हो, आप कई चीज़ें हैंडल करना सीख जाते हो. प्लस मैं जिन लोगों से जुड़ी, फॉर्चुनेटली आई कैन से टचवुड, बट बहुत अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ. क्योंकि मेरी जो फर्स्ट यूनिट थी, वहाँ पर 15 ऑफिसर्स थे, उसमें से 14 मेल ऑफिसर्स थे और 300 तो एयरमैन थे. सो आई वॉज दी ओनली फीमेल ऑफिसर. और पूरी रात मैं बैठ के काम किया करती थी, कई कई महीनों तक. लेकिन मुझे कभी कोई मतलब परेशानी, टॉर्चर या इल ट्रीटमेंट ऐसा कभी नहीं हुआ. इनफैक्ट बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत अच्छा गाइड किया मेरे सीनियर्स ने. और एक बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में मैं रही हूँ. और इवन मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में आई वॉज जूनियर मोस्ट, तो जो हमारा बैचलर्स का एक होता है ग्रुप, उनमें भी वी हैड अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग. तो ऐसा रहता है. एंड देन यू कीप लर्निंग ऑफ कोर्स विद एक्सपीरियंस. तो जैसे टेक्निकल चीज़ें हैं, सेकंड पोस्टिंग मेरी जैसलमेर थी, फर्स्ट वाज बरेली. तो वहाँ पर भी फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू हैंडल इश्यूज. यू स्टार्ट लर्निंग.
राइट.
दैट इज हाउ इट वेंट ऑल.
ग्रेट. डिसिप्लिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मैं कुछ दिनों पहले हमारे एक एयर वेटरन परवीन टुटेजा जी, जो हमारे राइटर्स क्लब में हैं कहानियों के सफर में, उनके साथ मैंने 15th अगस्त के मौके पर इंटरेक्शन किया था. एंड ही शेयर्ड सम ब्यूटीफुल स्टोरीज. और वो आज जो जज्बा आपके अंदर है ना, उस एज में वो भी वही जज्बा रखते हैं कि मैं आज भी, मुझे मौका मिले, मैं यूनिफॉर्म पहनूं और मैं तैयार हूं सर्व करने के लिए अपने कंट्री को.
right.
तो वो था. आई नो यू, जैसा कि आपने कहा भी सही कि आप उस यूनिफॉर्म के साथ भी कैरी करना चाहते हो अपनी लाइफ को, बट मैं जानता हूँ कि लाइफ बहुत सारे फेजेस दिखाती है। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी सेम प्रोफेशन में ही रहे हैं, है ना, और जिसकी वजह से आप आज भी सिटी टू सिटी ट्रेवल करते हैं कई साल, तो क्या वो रीजन रहे जिसकी वजह से आपको सर्विस से जुदा होना पड़ा?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकती मैं, बिकॉज दैट वॉज अ डिसीजन टेकन एट दैट टाइम। अब रीजंस जो भी हो, लेकिन एक निर्णय हम एक समय पे ले लेते हैं
जी,
सो उसके बाद आपको कैरी ऑन तो करना ही पड़ता है, यू कांट स्टॉप। आई मीन चाहे हम स्टॉप हो जाए, टाइम तो स्टॉप होता ही नहीं है, कैरीज ऑन,
दैट इज लाइफ।
या सो इसीलिए आफ्टर दैट एक्चुअली आई डिड माय एमबीए, आई मीन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम आईएम कलकत्ता। आई डिड अ कोर्स एंड देन आई जॉइंड मुंबई। मुंबई में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, आई वर्क देयर फॉर अ ईयर, देन आई वर्क इन बड़ौदा फॉर अ ईयर, तो ऐसे ही, और फिर ग्वालियर भी था बीच में, जहाँ मैंने रेडियो कम्युनिकेशन सीखा लेमन से, एंड देन आई जॉइन बिग एफएम। सो व्हाट माय इंटेंशन वाज कि जहाँ मैं जाऊँ बस सीखती रहूँ, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें से तो आई हैव टू डू समथिंग, सो आई जस्ट केप्ट लर्निंग।
यू आर अ ट्रू एग्जांपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि भले ही हमने कुछ समय ही साथ में रहे हैं हम, जहाँ पर ग्वालियर में कुछ वो दौर था, लेकिन जब वो सोशली मैं आपको देखता रहता हूँ ना, कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ एक्टिव रहती हैं। सोशल सर्विसेज से कैसे जुड़े आप, सामाजिक सेवा से, एनजीओ उपाय से कैसे जुड़ना हुआ?
एक्चुअली मुझे बहुत पहले से कुछ करना था बच्चों के लिए, और स्पेशली मेरी एक इच्छा है मैं बुजुर्गों के लिए कुछ करूँ, फॉर दी ओल्ड एज पीपल आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट आई हैवन्ट बीन एबल टू कनेक्ट विथ एनी वन एज सच। लेकिन क्या होता है ना, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन जेन्यून है कौन नहीं है, बिकॉज कई फ्रॉड्स भी होते हैं। तो हमारे एक क्लोज फैमिली फ्रेंड है, शी इज अर्चना श्रीवास्तव, मिस अर्चना श्रीवास्तव, शी वॉज अ टीचर अलॉन्ग विथ माई मदर। सो वो दीदी से जब मैं जुड़ी तो शी वॉज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद उपाय, दिस इज 2017, तो व्हेन शी इज एसोसिएटेड मीन्स इट्स जेन्यून, बिकॉज आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली, एंड सो आई न्यू कि व्हेन शी इज डूइंग समथिंग, वो भी ऐसी अभी आफ्टर रिटायरमेंट शी इज डूइंग सोशल सर्विस एंड एवरीथिंग, तो फिर मैं उसके थ्रू उपाय से जुड़ी और वरुण सर से मेरी बात हुई, वरुण श्रीवास्तव सर से। सो ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, बहुत एक्टिव है, हम्बल है, और जो कहते हैं ना साइलेंट वर्कर, बहुत कुछ करते हैं बट उनका कुछ कहीं पे नाम नहीं होता, इन द सेंस वो खुद तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। सो आई गॉट एसोसिएटेड विद देम, लेकिन नागपुर में मैं एक दो बार ही जा पाई, सेंटर ज़्यादा नहीं जा पाई। फिर मैं ऑनलाइन उनसे जुड़ी, सो आई यूज़ टू डू कंटेंट राइटिंग, सिलेबस राइटिंग फॉर देम, और अभी मैंने 8 अक्टूबर को उन बच्चों के लिए भी डिफेंस ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया, तो वो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक थे ज्वाइन करने के लिए। और अभी जब मैं बीच में पुणे गई थी तो पुणे में भी मैंने उपाय के सेंटर पे जाके उनको एक दो घंटे के लिए आई जस्ट स्पोक टू देम और उनको थोड़ा टीचिंग लर्निंग किया, तो बस यही है, अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों से जुड़ना और कुछ करना उनके लिए।
बहुत अच्छा लगा सुनकर के, और जब भी आप समाज के लिए कोई कार्य करते हैं, सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो जैसा आपने बताया कि आपने सिलेबस राइटिंग का कार्य काम किया सेवा की, या कंटेंट राइटिंग में अपना सहयोग दिया, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने वरुण जी के बारे में बताया कि वो काम के लिए काम करते हैं, नाम के लिए काम नहीं करते, तो ये तय है कि वो बहुत सारी दुआएं कमा रहे हैं। और जो लोग काम के लिए काम करते हैं ना, उनका जब नाम होता है तो न मिटने वाला नाम होता है, अमिट नाम होगा,
वेरी ट्रू,
ऐसा नाम होगा जब भी होगा। और ऐसी चीजों में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल नाम के लिए काम किया जाता है और काम के नाम पर थोड़ा सा सिफर होते हैं नतीजे, है ना, सिफर होते हैं नतीजे।
That is there.
तो intentions, your vibe attract your tribes, ऐसा भी कहते हैं, और intentions जैसी ही रहती हैं, हमारी vibrations जैसी रहती हैं, ऐसे ही लोगों से हम जनरली अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं या हमारे जो वाइब्रेशंस हैं उससे न मिलने वाले लोग हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, वो भी आएंगे लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग आते हैं। और जो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है वो आपकी जैसी सोच और विचारधारा रहती है, ऐसे लोगों से आप जुड़ जाते हैं। तो देखिए, आपके मन में था बुजुर्गों की सेवा करने का, तो उपाय से आप जुड़ गए। और
Actually,
आपका
उपाय
वो
तो उपाय तो ज्यादा बच्चों के लिए ही है
जी, मतलब,
लेकिन उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं कई चीजें। और जो बात अभी आपने कही ना लोगों से जुड़ने की, तो एक चीज जो मैंने फील की है कि थ्रू आउट माय जर्नी मुझे मतलब बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे लोग मिले। और एक चीज मैंने भी नोटिस की कि यदि हम अच्छे से बात करें ना तो सामने वाले हमेशा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो कोई गेटकीपर हो, चाहे कोई लेवल के लोग हो, ऐसे लेवल इन द सेंस कोई भी जॉब में हो, कोई भी जॉब में हो, वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं। तो ये मैं कहूँगी कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा दिया और गाइड किया या साथ में रहे, तो उससे काफ़ी फायदा होता है इन द सेंस कि आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, आगे क्या करना है, या जैसे हम किसी चीज़ों से जुड़ते हैं संस्था, कोई संस्था से, तो बहुत उसका अच्छा असर होता है, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल होता है
आपकी लाइफ पर,
बिल्कुल होता है। देखिए, आपने जो बात कही उसे अगर शब्दों में समेटना चाहूँ तो यूं कहूंगा कि सम्मान देना ही सम्मान लेना है
जी।
और बुजुर्गों की सेवा करने का जो, बिल्कुल ठीक है कि उपाय बच्चों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको आप सेवा के माध्यम से, जिनके अंदर अच्छे संस्कार डाल रहे हैं, जिन बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, उस जगह पर बुजुर्ग कभी भी परेशान और दुखी नहीं रहते।
हाँ, क्योंकि उनके परिवार तो है ही, उनके तो परिवार हैं सबके, और वो रहते हैं सब लोगों के साथ, पेरेंट्स और दादा दादी के साथ, तो डेफिनेटली वो चीज़ तो है। और जैसे मैं कहती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी हूँ तो इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, हमारी बात नहीं होती, हम कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, लेकिन जब आपके मैं रिकॉर्डिंग्स या लिंक्स देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे हमने सीखा था, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव वाइब्स आर देयर, लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स आर देयर, सो इट्स अ गुड थिंग
जी। थैंक यू सोनाली।
लाइक दिस सोचकास्ट, ट्यून इन फॉर मोर विद द सोचकास्ट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर।
और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बुजुर्गों की सेवा आप कर ही रहे हैं। और मुझे याद आता है कि एक आर्टिकल आपने लिखा था ऐसे ही, एक जो बुजुर्गों की सेवा के ऊपर, सर्विस के ऊपर ही था, उनके हालातों के ऊपर,
बुजुर्ग बच्चे
राइट, बुजुर्ग बच्चे, तो उसे जो भी पढ़ेगा, मैं समझता हूँ, देखिए विचार ही है जो, मैं तो केवल आवाज बन सका उस आर्टिकल की, मगर वो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल थॉट था, इतना पावरफुल आर्टिकल था वो, कि उसे जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ऐसे तो सब तक पहुंचाना चाहिए, तो दैट आई कुड डू। आपकी कहानियां भी ऐसी ही हैं जो आपने कहा भी सही कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है रियल लाइफ से, एंड देन यू कन्वर्ट इनटू फिक्शन ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे लोगों का पढ़ने में। तो तलाक जो कहानी है वो तलाक है ही नहीं उसमें, उसमें तो मिलन है। भले ही हमने टाइटल वैसा रखा
है,
और आर्टिकल की वजह से जनरली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ना
टाइटल से।
हाँ, टाइटल की वजह से,
टाइटल से।
तो तलाक सुनकर के लोग आएंगे डेफिनेटली, लेकिन तलाक कभी नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है उसमें
जी।
बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत एक्चुअली जो इंटीमेट जो हमारी भावनाएं रहती हैं एक दूसरे के प्रति, वो बहुत सुंदर तरीके से निकल करके आई हैं, सिर्फ एक इंसिडेंट से, सिर्फ एक छोटी सी आदत, है ना। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं उसकी लिंक जरूर दूंगा इस इंटरव्यू के साथ में ताकि सब सुन सकें। एंड जो दूसरी कहानी है वो तो कमाल ही है, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन 60,000+ उसके लेसन हैं यूट्यूब चैनल पर, द मोस्ट हर्ड स्टोरी ऑन माई यूट्यूब चैनल।
इज इट?
यस।
Oh my God!
हाँ,
this is a surprise for me.
हाँ जी, the most.
Thank you.
हाँ, सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी है वो।
माँ की शादी।
Yes.
Oh my God.
ये अच्छा हुआ कि आपने बोला।
Thank you so much. It's a big surprise for me.
और देखिए उसका भी टाइटल कैसा है स्टोरी का।
जी।
तो बहुत सारे ख्यालात आ जाते हैं ना उसको सुन करके, सोच उसको, उस टाइटल को पढ़ करके कि ये क्या होगा। एंड यू हैव ब्यूटिफुली क्यूरेटेड दैट स्टोरी. इतना अच्छे से आपने उसका फ्लो बनाया है, इतने सुंदर तरीके से उसमें बीच में मतलब सारे ट्विस्ट एंड टर्न है और क्लाइमेक्स बेहद खूबसूरत है.
थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.
बहुत अच्छी सोच के साथ में वो कहानी आपने लिखी है. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और खुद को मैं लकी भी मानता हूँ कि मैंने उस कहानी को आवाज दी.
सर सेम ईयर. सेम ईयर. एक्चुअली वही एक बेसिक थॉट प्रोसेस होता है बिकॉज वेरी ऑनेस्टली व्हेन माय फादर वाज नो मोर वी हैड अपफ्रंट टोल्ड माय मदर कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत समाज में बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए अभी भी.
हाँ.
कि आपके बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं या कोई बड़े हैं, मीन्स अभी तो जॉब कर रहे हैं और आप शादी करोगे, हाउ इज इट पॉसिबल. लेकिन ऑफ कोर्स माय मदर हैड अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस एंड शी वाज वेरी हैप्पी विथ हर लाइफ. तो उस थॉट प्रोसेस से ये आया था एंड देन ऑफ कोर्स द राइटिंग फ्लोज. आप तो खुद राइटर हैं तो आप जानते हैं.
नहीं, बहुत सुंदर तरीके से थॉट. बहुत देखो आपने कितना प्रैक्टिकल थॉट उठाया और उसको स्टोरी के रूप में बुना. इसमें कहीं से कहीं तक देखिए सुनने में जो इससे कनेक्ट फील नहीं करेंगे ना शायद उनको अजीब सा लगता होगा, मगर इसमें कहीं कहीं से भी कहीं तक जाने वाले सोल के लिए डिसरेस्पेक्ट नहीं है.
Exactly.
बात यह है कि प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस हैं, जो जो लोग हैं अभी जो जिन सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनके लिए कितना लवफुल जेस्चर है, ये रिस्पेक्टफुल जेस्चर है. तो आई रियली अप्रिशिएट एंड सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने वो कहानी लिखी भी है और आपके प्रयासों से ही, क्योंकि वो उसमें आपके ही एफर्ट्स हैं, वो सभी तक पहुंच रही है. 60,000 लोगों ने सुनी, मतलब 60,000 लोगों तक वो थॉट पहुंचाना
जी,
तो ये एक अच्छी बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी है वो मेरे चैनल पर.
सर मेरे लिए तो शॉकिंग सरप्राइज, आई मीन प्लेजेंट सरप्राइज, बट बहुत अच्छा लगा सुन के. मुझे नहीं,
आई वांटेड टू टेल यू, लेकिन ये भी एक खूबसूरत मौका है जिस वक्त मैं आपको ये बता पा रहा हूँ.
थैंक यू सो मच.
तो सोनाली, अभी हालांकि बातों बातों में आपने कहा कि एक प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो ही था वो आपकी लाइफ का जहाँ से आपने उसको एक स्टोरी के रूप में लिखा, मगर जैसे जो पोएम लिखना है या जो स्टोरीज लिखना है, ये कब रियलाइज हुआ आपको कि आप लिखते हैं और आपको लिखना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए?
मैं लिखती तो बहुत पहले से हूँ, 12-13 साल की एज से लिखती हूँ और मैं डायरी बनाती थी और लिखती थी. तब के थॉट्स तो थोड़े से अलग रहते हैं और जो दिमाग में आता है हम लिखते जाते हैं ग्रेजुअली. देन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर, फिर मैंने टाइम्स वगैरह में देना शुरू किया मेरी पोएम्स, थोड़ा सा कलेक्शन, और बस लिखती तो हमेशा से ही हूँ. लेकिन वही है कि हमें भी कभी कभी रियलाइज़ नहीं होता. और दूसरा क्या है कि एक मेरे में तो है कि आई विल अंडर एस्टिमेट माई राइटिंग्स मोर, इन द सेंस कि मुझे हमें कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है. मैं वो कोई पोएम लिखती हूँ तो मुझे लगता है ये अच्छी नहीं है और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब दूसरे सुनते हैं तो उन्हें उन्हें पसंद आती है. तो फिर
अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बताता हूँ. लता मंगेशकर जी से तो हम सब वाकिफ हैं, स्वर कोकिला, भारत की स्वर साम्राज्ञी, विश्व की. तो हर गाना गाने के बाद ना वो यही कहती हैं जब बन जाता है, अरे मैं थोड़ा और अच्छा गा सकती थी. फिर से
सर उनका कंपैरिजन मत कीजिए. वो तो बहुत ग्रेट है, बट ये तो एक मेरा छोटा सा सेटिस्फाई मींस वो रहता है, यू कॉल कि थॉट रहता है ना माइंड में, नहीं और अच्छा और अच्छा. और इनफैक्ट एक बात है, मेरी किसी से बात हुई थी, आई डोंट नो हर डायरेक्टली, थ्रू अ फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने बुक पब्लिश की थी, तब उन्होंने मुझे ये बात कही थी. शी सेड कि जब तुम स्टोरीज लिखोगी सिर्फ एक बार देख लेना और फिर दे देना, बिकॉज तुम जितना पढ़ोगे तुम्हें लगेगा ये ठीक नहीं है और इसमें एडिट करो. सो यू विल नेवर एंड, that process will never end. So, तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी story complete हो गई है, just give it for publishing. So that was what
ऐसा ही होना चाहिए. और मैंने जो आपके सामने बात रखी, comparison नहीं किया, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट के कुछ बेसिक क्वालिटीज होती है तो वो बेसिक क्वालिटी
हाँ, लेकिन उनका तो लेवल ही मतलब
मैं एक बात बोलता हूँ, वो देखिए उनका लेवल बहुत अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने भी अपना जीवन एक तपस्या की तरह बिताया है, पर एक बात है ना कि पूरा जीवन एक एक दिन के एडिशन से बनता है, एक दिन में दी लता मंगेशकर नहीं है, एक एक दिन की तपस्या है और जर्नी है, वो
जर्नी है, दैट इज देयर,
है ना। तो एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी मैंने आपके अंदर बता दी। देखिए आप, मैं सर्वगुण संपन्न कहने से जरा भी गुरेज नहीं करता हूँ जब आपकी बात करता हूँ तो।
थैंक यू सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कोशिश रहती है कुछ अच्छा करने की, और मुझे अभी भी लगता है कि कई चीजें तो मैंने की नहीं है, सीखी नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग, सो आई विल कीप डूइंग एंड ट्राइंग।
नहीं, ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लर्निंग जिसकी स्टॉप नहीं होती वो लाइफ में ग्रो करते रहते हैं।
That is there.
अब आप मुझे ये बताओ कि आप जहां जाते हो कुछ ना कुछ धमाल करते हो, है ना, आप रेडियो प्रोग्राम शेड्यूलर की जॉब हैदराबाद में की या कहीं किसी और सिटी में थे तब आप?
नहीं, वो तो हमारा 92 वाला ही, और अच्छा, कहीं नहीं,
92 में किया। नहीं, आप किसी आकाशवाणी में एसोसिएटेड हुए थे
मुझे। I was, yes, ग्वालियर only, ग्वालियर itself,
ग्वालियर में, ग्वालियर
में, all India radio, all India radio।
मैं चला गया था ग्वालियर से बाहर।
Exactly, हाँ। और in fact मुझे उनका ऑफर भी आया था to join,
right?
But that time I had just left ग्वालियर, मतलब मैं ग्वालियर से निकल गई थी
तब तक।
हाँ जी, मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी थी, ये मैं खुद भूल गई थी।
देखो मैंने कहा ना, मुझे याद है
क्योंकि इतना कुछ करते करते ना कुछ तो छूट जाता है कभी कभी।
नहीं, आपकी एक्टिविटीज चलती रहती है लगातार, और मुझे वो उपाय के साथ आपका जुड़ना, और आज मैंने डिटेल में जाना कि आपने कंटेंट राइटिंग, अब मैं रिकॉल कर सका, बेसिकली आपने शायद मुझे पहले भी बताया था कि आपने सिलेबस भी लिखा है, कंटेंट राइटिंग आप रेगुलर कर रहे हैं।
एक्चुअली वो सिलेबस कन्वर्जन, नॉट एग्जैक्टली राइटिंग, हाउएवर हाँ उसमें कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है उनका, कुछ ना कुछ आर्टिकल राइटिंग और वो सब,
प्रेस रिलीजेस वगैरह भी शायद आपने लिखी हैं उनके लिए, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ
थोड़ा बहुत।
हाँ,
कुछ ना कुछ तो लिखती रहती हूँ।
आपके डांस भी लगातार रेगुलर चलते रहते हैं और वो प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, ब्यूटी पेजेंट में भी आपने हिस्सा लिया, मिसेज इंडिया एडवेंचरस का खिताब आपको मिला हुआ है, तो ये इनमें पार्टिसिपेशन कैसे और कहाँ हुआ और क्या जज्बा था वो?
ओके, वही है कि डांस भी तो मुझे बचपन से ही पसंद था, मैं सीखती थी कथक जब मैं 8th-9th क्लास तक, उसके बाद फिर 10th में गई तो छूट गया, लेकिन मेरे फादर अगेन यूज टू पुश मी अलॉट कि जो मर्जी वही करो, कुछ और किसी का सुनना नहीं है, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे करो। सो मैंने अभी कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स बैक, मैंने फिर से कथक को रेगुलर किया, और अभी आई एम इनटू विशारद फाइनल ईयर ऑफ कथक सिंस पास्ट 7-8 ईयर्स, तो वो भी एक पैशन है मुझे। मैंने फिर थोड़ा बेसिक भरतनाट्यम भी सीखा, सालसा भी सीखा, तो जब जब मौका मिला सीखती गई, और डांस तो मुझे बहुत पसंद है, पैशन है मेरा। रही बात मिसेस इंडिया की, तो मैं स्कूल में थी तब मैं कैटवॉक करती थी, हैज़ टू डू कैटवॉक, रैम्प वॉक जो बोलते हैं ना, रैम्प पर, तो वही एक शौक तो सबको रहता ही है थोड़ा बहुत कि एक्टिंग या उस फील्ड में या कुछ मॉडलिंग जैसा। तो मुझे पहले लगता था कि मॉडल्स के लिए आपको 5'8" ऐसी कुछ हाइट चाहिए, बहुत आप टॉल होने चाहिए। फिर तब मेरे फादर ने एक दिन मुझे समझाया कि नहीं, जो एडवर्टीजमेंट में भी करती हैं लेडीज, दे आर ऑल्सो मॉडल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स, सो इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो डू। ये कब की बात होगी, मेरे 7th-8th स्टैंडर्ड की, तो तब उन्होंने मुझे ये भी बोला था, तो वो कहीं रह जाता है मन में, एंड आई वॉन्टेड टू वॉक द रैम्प, वो मेरा एक ड्रीम था, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मुझे 10 साल लग गए वो रियलाइज करने में, एक्चुअली टू पुट इट इन एक्शन, क्योंकि कई बार हम सोचते ज़्यादा है, कर नहीं पाते, समटाइम्स इनहिबिशंस मुझे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कभी कभी सर्कमस्टांसेस। सो फाइनली व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगा कि बस मुझे करना चाहिए, सो आई गॉट इन टू इट, so main aim was that, but again yes, वहाँ पे भी काफी सीखने मिलता है आपको, हर चीज से लर्निंग वैल्यू है,
right?
That true. is how I got.
I'm telling you, you are inspiring in so many ways. You are inspiring in so many ways. तो ये तो आपका चल ही रहा है, then मैं देखता हूँ कि आपके पास खुद से चलकर के अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कि आप प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट भी करती हैं, एज एन एमसी उन्हें होस्ट करती हैं।
जी, मुझे एंकरिंग का भी शौक बहुत पहले से रहा है। मैंने एफओएस में बहुत एंकरिंग की है और बेसिकली स्टेज फियर नहीं था, तो आई यूज्ड टू जस्ट टॉक, और मुझे पसंद है तो फिर जहाँ जहाँ मौका मिलता है आई जस्ट कीप डूइंग इट। एंड वो होता है ना, एक लिंक लग जाती है कहीं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो यू गेट अपॉर्चुनिटीज, सो आई ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट।
सिंपली वाओ, अच्छा है, ये सब होते रहना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू टॉक अबाउट योर बुक। इन दिनों आप एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के तौर पर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और आपका जो मिशन है खूबसूरत कि आप बहुत सारी गर्ल्स को इंस्पायर करना चाहते हैं। बाय 2022 यू हैव मेंशन दैट 1000 गर्ल यू वांट टू इंस्पायर देम टू जॉइन एनसीसी।
नो, डिफेंस, बेसिकली डिफेंस,
बेसिकली, हां राइट,
बेसिकली डिफेंस, एनसीसी एंड डिफेंस,
राइट। तो इसके पीछे का जज्बा तो मुझे समझ में आता है, बट ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? अगर कोई इस प्रोग्राम को सुन रहा है, इस इंटरव्यू को सुन रहा है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप प्लीज बताइए ना।
लाइक दिस सोचकास्ट, ट्यून इन फॉर मोर विद द सोचकास्ट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर।
फिलहाल तो मैं जो इनविटेशन कॉलेजेस से आते हैं उन्हीं के यहाँ जाके स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ। हाउएवर, ये मैंने फिलहाल ही डिसाइड किया है, आई कैन से जस्ट अ मंथ अगो ये मुझे आइडिया आया कि आई शुड एनकरेज गर्ल्स टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, आई मीन एनसीसी ऑल्सो, बट जो कॉलेज में है अभी और ऑलरेडी फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए ये अभी एक क्रूशियल टाइम है टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। सो मुझे लगता है कि गर्ल्स को यदि कुछ इनहिबिशंस हैं कि वहाँ पे कैसे होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, या क्या जॉब टाइप होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब, और यूनिफॉर्म हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉरपोरेट, क्योंकि जॉब, नॉर्मल जॉब तो सब जानते हैं, ऑफिस में जाना है, काम करना है, बट व्हेन वी से फौज तो क्या होता है, तो मतलब वो उनका डर है या कोई डाउट्स है तो वो मुझे क्लियर करना है। एंड अभी तो जस्ट मैंने ये सोचा है, बट उस मिशन के लिए, विजन के लिए मैंने कुछ शुरुआत नहीं की। आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट लेक्चर ऑफकोर्स, लेकिन अभी धीरे धीरे आई वर्क ऑन इट, एंड ऑफकोर्स दोज हु वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन लिंक्डइन।
राइट, मैं उसके लिंक्स मेंशन करता हूं कि आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पर। एंड आई एम श्योर कि जब इंटेंशंस इतनी प्योर हैं, मिशन इतना ग्रेट है, तो सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू।
थैंक यू सर,
होना ही है। अब मैं बात करता हूं आपकी बुक के बारे में, कुछ कहानियां ऐसी भी
जी,
है ना, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप एक्टिव तो बने ही हुए हैं, है ना सर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज चल ही रही हैं, और बुक लिखना और उसको कंपाइल कर लेना आपस में और उसका पब्लिकेशन तक जाना एंड देन उसका पब्लिश हो जाना, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि अगर इजी होता तो हर कोई ऑथर होते, ये कैसे पॉसिबल हुआ?
नहीं, बस जब मैंने सोचा तो आई स्टार्टेड ऑलरेडी, मैंने 2-3 स्टोरीज तो लिखी थी, फिर मैंने धीरे धीरे स्टोरीज पे वर्क करना शुरू किया और मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा, क्योंकि ये सब मैंने सिंगल हैंडेडली किया, मीन्स कॉन्टैक्टिंग द पब्लिशर, और उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, बट खुद ही मैंने ये सब किया कि एडिटिंग उसका, और जो फिर उसमें इलस्ट्रेशंस हैं तो इलस्ट्रेशंस के आइडियाज़ देना कि कैसे चाहिए टू द आर्टिस्ट, हाउ आई वांट द इलस्ट्रेशंस, सो इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस अगेन, और धीरे धीरे मैं करती गई, थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ के या फिर जैसे मुझे ठीक लगा मैंने किया, और हाँ एट द एंड लगता है कि कुछ गलतियां हुई, बट देन यू लर्न, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करेक्ट था, बट मुझे इतना था कि एक मुझे बुक अपनी पब्लिश करनी है, तो मैंने मेरी माँ से कहा था कि हमारे यहाँ कोई ऑथर नहीं है ना, तो एक लेखिका तो चाहिए घर में। ऑफ कोर्स इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट अच्छा लगता है जब आपको आप मतलब आपकी बुक प्रिंट होके आती है, it feels good, and then to
आप कितनी persuasive हैं, persuasion की quality इसमें निकल करके आती है, प्रत्यक्ष होती है, साफ सी बात है, and एक और चीज निकल करके आती है, because you have managed everything single-handedly, खुद से किया, that means clarity is there in your mind, आप clarity के साथ चले हैं। ठीक है, कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट तो एक ही है भगवान, बाकी सब तो एक्यूरेसी के लेवल पर भी पहुंच जाए तो बड़ी बात होती है। तो ये चीजें चलती हैं, बट फिर भी देर हैज बीन अ क्लैरिटी इन योर माइंड। मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा, क्लैरिटी के लिए आप कुछ करते हैं या कैसे क्लैरिटी लाई जाए?
एक तो आई कैन से कि मेडिटेशन डेफिनेटली यू शुड डू एंड कंपाइल योर थॉट्स, जो आपको करना है उस दिशा में आपको एक आपका एक थॉट टारगेट थॉट होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज क्या है ना, बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील की है कि हम हर चीज़ में एक गट फीलिंग होता है, आपकी इनर कॉलिंग एक रहेगी कि ये करना है या नहीं, वो आपको सुनना चाहिए। सो वो इनर कॉलिंग कितने लोग सुनते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, किसी भी इनफैक्ट किसी से जुड़ने में भी, किसी काम में भी, राइटिंग में भी, बहुत सारी चीज़ों में। सो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि एक अंदर से रहता है ना, हम तो सिंपल चीज़ में भी इनर कॉलिंग ढूंढते हैं। खाना खाने जाओगे तो आज आपको पनीर खाना है कि आपको मिक्स वेज खाना है तो आपको एक फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
दिस इज अ वेरी, मैं क्या कहूँ, इतना प्रिसाइज वे में आपने इतनी अच्छी और गहरी बात कही है कि ये बहुत बहुत से लोगों के काम में आने वाली है। सोनाली, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम इज रनिंग फास्ट, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो मैं चलने से पहले आपसे क्विक वे में पूछना चाहूंगा, है ना, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना होगा
जी।
ठीक है, आपका फेवरेट कोट?
या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर व्हाट डू नॉट लेट यू स्लीप, दैट इज माय फेवरेट कोट।
ट्रू। बुक्स यू सजेस्ट टू रीड?
वेल, वन book I would like to suggest is Who Moved My Cheese by Dr. Spencer.
Meri bhi favorite hai. Your favorite technical gadget or application you use the most?
Favorite as such to koi nahi hai, abhi filhal WhatsApp pe hi kaam chalta hai.
Lifeline.
Yeah.
Theek hai. Aapke healthy aur fit rehne ka funda?
Compulsory exercise and watch your food. Watch your words and watch your food. And definitely exercise. Exercise is must. That's it.
I'm so sorry. मेरे पीछे कुछ disturbance आ रहे हैं, but मुझे अभी ही नहीं record करना होगा. No choice.
No, fine. That's fine.
So, how do you maintain the harmony in your family?
Well, agree to disagree.
Oh, sweet. So sweet. Wealth and make money funda.
Sorry?
Wealth making or make money formula?
Be consistent, just listen to yourself, keep going, then only you can achieve something.
Follow your instinct, basically. Yeah. So what do you do for your spiritual growth?
Well, I read a few books and sometimes I watch channels, but not much, kyunki waise hi hamare ghar mandir to hai. I just pray sometimes and I'm not too much into it, but I can say just to keep the mind calm.
Okay.
I pray.
Meditation करते हैं आप?
बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार. Sometimes I do.
So your social balance formula, जो आप social services भी करते हैं, extra curricular activities में खुद भी active रहते हैं, अपने बच्चों को भी आगे रखते हैं.
हाँ, I can say my daughter is already a writer at nine, at the age of nine.
Wow.
So basically time management, because व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के रील देखते देखते तो एक घंटा चला जाता है, सिंपल. कुछ करना है तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई डू रन ऑन मेनी फ्रेंड्स, मैं बहुत कुछ करती हूँ, तो इट इज डिफिकल्ट अदरवाइज. आप यदि टाइम डिसिप्लिन वे से नहीं करेंगे तो यू कांट अचीव, इट्स डिफिकल्ट.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एनी मोमेंट व्हेन लाइफ पुश्ड यू टू टेक लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ राइट?
हाँ, कई बार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मेनी टाइम्स इट इज हैपेंड, एंड समटाइम्स आई डू फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट देन अगेन यस, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, कांट गो बैक. सो लाइफ में डिलीट बटन नहीं है ना.
ट्रू ट्रू. सोनाली, कुछ कहानियां ऐसी भी की तो मैं अमेजोन लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि हम उसे पढ़ सकें और इसे सुनने वाले भी उसे पढ़ सकें. अभी स्टोरी नरेट करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप पोएट्री भी लिखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी लिखी एक पोएम, कोई भी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो ज़रूर सुना दीजिए प्लीज़।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत क्या कहते हैं ट्रिकी है, बिकॉज जो भी राइटर होता है उसको सब कुछ इज वेरी क्लोज, दिल के करीब ही होता है। जैसे सिंगर को शायद हर गाना बहुत अच्छा लगता होगा,
मुश्किल हो जाता है चुनाव।
एग्जैक्टली। तो अभी इस वक्त मैं एक पोयम बोलना चाहूंगी, हिंदी पोयम है
जी।
नाम उसका टाइटल है खुशी।
ओके।
सस्ती लगती है वो, पर अमीरजादे भी खरीद नहीं पाते। गरीब के घर में रहती है ये दावा भी नहीं कर सकते। मन चली है वो, मनचाहा करती है, कभी खिलखिलाकर हंसती है, कभी बेवजह रूठ जाती है। हर किसी को हर वक्त हर कीमत पर वो चाहिए, हर किसी को हर वक्त हर कीमत पर वो चाहिए, वो भी तो है नटखट, लुका छुपी खेलती है। खुशी की बात हम कर रहे हैं
जी।
मैंने भी तो ढूंढा उसे, मैंने भी तो ढूंढा उसे, हर शहर हर गली घर घर के कोने में, घर के हर कोने में। ना जाने लापता क्यों है जमाने से, रपट क्यों कोई लिखाता नहीं, गुमशुदा की तलाश है, मिले तो इनाम है। सुना है जब कोई मुस्कुराता है वो आ जाती है, या शायद उसके आने से ही तो कोई मुस्कुराता है। रूप है उसके कई, सबके लिए एक जैसी नहीं, रूप है उसके कई, सबके लिए एक जैसी नहीं। किसी की खाली थाली में वो दिख जाए, किसी के भरे आंगन में वो नजर ना आए। मैंने उसका पीछा करना अब छोड़ दिया है, मैंने उसका पीछा करना अब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे मेरा पता अब मिल गया है। धन्यवाद।
बहुत खूब, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू
सोनाली। एक सवाल और पूछना चाहूंगा
जी।
आपकी सक्सेस के लिए जो भी आप, क्योंकि आपने कई फील्ड्स में ट्राई किया है, बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, रिस्क लेते हैं आप, लेकिन फिर भी आप अपनी सक्सेस के लिए अगर मैं कहूं कि क्रेडिट देना है तो किसे देना चाहेंगे?
वैसे तो ये डिफिकल्ट है, बिकॉज हर फील्ड में कोई ना कोई जब आपको सपोर्ट करता है या गाइड करता है तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेनली आई गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, क्योंकि जैसे उन दोनों ने मुझे बढ़ाया है, पाला पोसा और बड़ा किया, तो जो सोच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी थिंकिंग से ही आप बनते हो
जी।
तो रिस्क तो लेना ही है, और सक्सेसफुल हो गए ये ज़रूरी नहीं है, इट्स लाइक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी पड़ती है। और मेरे केस में तो मैं कह सकती हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, क्योंकि कई चीज़ें आई कीप ट्राइंग एंड परफेक्शन आई एम प्रोबेबली फार अवे फ्रॉम, लेकिन फिर भी उन्हीं को मैं श्रेय देना चाहती हूँ, बिकॉज हम भी काफ़ी कठिन समय से बीच में गुजरे थे। तो जिस तरह से मेरी माँ ने हम लोगों को बड़ा किया पिताजी के बाद, वो बहुत मायने रखता है, और वो हमेशा मेरे बैक ऑफ माइंड में रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि उनको खुशी मिले। जैसे बुक का भी उनके दिमाग में था कि मैं लिखूँ, तो ऐसे मुझे पेरेंट्स से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मैं कह सकती हूँ
जी। मैं बिल्कुल ये शब्द सुनना चाहता था, और मैं मेरा अनुमान भी था कि जिस तरह की पेरेंटिंग आपको मिली है ये क्रेडिट उनको जाना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप पेरेंटिंग की उस लेगेसी को आगे ले भी जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और मौका देता हूँ आपको मैं उसे मौका ही कहूँगा, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग आते हैं जो शायद नहीं आते, तो शायद वो राह नहीं मिलती, वो गाइड नहीं मिलती, है ना। जैसे उपाय से जुड़ने के लिए आपकी एक दीदी हैं, वो निमित्त बनी, है ना, वो माध्यम बनी। तो ऐसे ही कोई और लोग जिन्हें आप इस वक्त याद करना चाहें और उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहें?
ऐसे तो वैसे काफ़ी लोग हैं मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से घिरी हुई है, और उन्हीं के सपोर्ट से या बेस से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगी, गायत्री है, उदिता है, दीपक है, और मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, मनीष है। तो उन लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब भी मैं कभी किसी ट्रबल में आती हूँ। जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं चैतन्य, वो अब्रॉड रहते हैं, और तो कभी जैसे हम लोग कॉलेज में साथ में थे तो कभी जुड़ते हैं तो बातें डिस्कस होती है, पता चलता है अच्छा इस फील्ड में भी हम कर सकते हैं या क्या उन्होंने अचीव किया है और कहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो लॉट ऑफ सपोर्ट इज देयर फ्रॉम द फ्रेंड्स और मुझे गाइडेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे पहले से भी जानते हैं उन्हें मेरा नेचर पता है, वो मुझे जानते हैं, सो वो मैटर करता है बहुत लाइफ में
जी। तो, और मैं वही चाह रहा था कि इस मौके पर इस बातचीत के दौरान ऐसे लोगों का जिक्र ज़रूर हो, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही लाइफ कंप्लीट होती है।
नहीं डेफिनेटली, और आई थिंक सो मैं सबके नाम शायद ले भी नहीं पाऊँ क्योंकि सडनली स्ट्राइक नहीं होता है हमें नाम भी, बट मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है लोगों का, बिकॉज आई वैल्यू पीपल, आई वैल्यू रिलेशनशिप्स, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हर एक से हमें फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है, समटाइम्स द बॉन्ड्स आर वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, तो वो है।
थैंक यू सो मच सोनाली। मैं लास्ट वर्ड्स में आपके चाहूंगा, अभी तक हमने इतना जो आपसे बातचीत की है उसमें आपका एक एक एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर करता है। आप भले ही उस इंटेंशन से या उस उद्देश्य से ना कर रहे हो, लेकिन यू आर फॉलोइंग योर इनर इंस्टिंक्ट। अगर मैं जेस्ट के रूप में इस पूरे बातचीत का सार आपसे सुनना चाहूं जो ऑडियंस तक पहुंचे, वो क्या होगा?
मुझे लगता है कि बस कीप मूविंग फॉरवर्ड। नेगेटिव थिंग्स या मुसीबतें तो बहुत आएंगी लाइफ में, इट्स नॉट पॉसिबल कि नहीं आएंगी, बट यू हैव टू ओवरकम दैट, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरा ये है कि कोई सिंपल फंडा है ना, आप रोओगे तो कोई नहीं रोएगा, दुनिया नहीं रोएगी आपके साथ, हंसोगे तभी हंसेगी। सो डू ट्रस्ट पीपल, लेकिन आपको क्या करना है, आपका विजन मिशन गोल क्लियर रखिए, बी ट्रू, बी ऑनेस्ट, एंड जस्ट कीप मूविंग, कंसिस्टेंसी इज द की, सो जस्ट कीप मूविंग, एंड जो आपको दिल से लगता है वो कीजिए, उसी में आपको खुशी मिलेगी, तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गए ना।
सच है, बिल्कुल सच है। थैंक यू सो मच सोनाली, जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम होगा, बिकॉज विद इन द लिमिटेड टाइम यू हैव गिवन सो मच वैल्यू, और लाइफ लॉन्ग लर्नर जो आप हैं, सबसे बड़ी बात यही ही इंस्पायर करती है, आप अनस्टॉपेबल हैं, आप लर्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, अपनी इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं, पेरेंटिंग की जो लेगेसी आपको अपने पापा से मिली आप उसे आगे भी ले जा रहे हैं। कीप डूइंग दैट, बेस्ट विशेस फॉर यू, मोर पावर टू यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, एंड माय प्लेजर, एब्सोल्युटली, थैंक यू
सोनाली।